नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी,
पुस्तक का नाम है 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग एक। ये पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी 1988 से 90 के बीच।
जी हाँ, ये उनकी जो क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला थी उसी का हिस्सा है।
बिल्कुल।
और पूज्य गुरुदेव ने तो इस साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था।
हाँ, उन्होंने कहा था कि इसे जन जन तक पहुंचाना है, यह उनका आग्रह था।
तो आज हम इसी ज्ञान शरीर को इस पुस्तक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।
इसमें जो विश्लेषण है, जो भविष्य का खाका खींचा गया है।
बिल्कुल, ये पुस्तक देखिए एक तरह से 20वीं सदी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी जो वैज्ञानिक तरक्की हुई वो तो है ही
जी,
लेकिन साथ ही उस तरक्की के जो साइड इफेक्ट्स हुए, जो संकट पैदा हुए,
हाँ, जैसे
जैसे पर्यावरण का विनाश, समाज का बिखरना, बढ़ती हुई आबादी का बोझ, पूज्य गुरुदेव ने इन सब पर गहरी चिंता जताई है।
लेकिन सिर्फ चिंता नहीं,
नहीं, यही तो खास बात है। वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, वो एक उम्मीद भी जगाते हैं, एक रास्ता भी दिखाते हैं कि इनसे निपटा कैसे जाए।
सही, तो चलिए इसी को समझते हैं। पूज्य गुरुदेव 20वीं सदी की जो तस्वीर दिखाते हैं वो कैसी है, मतलब संकटों का मूल वो कहाँ देखते हैं?
वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि विज्ञान ने, बुद्धि ने इंसान को ताकत तो बहुत दे दी, अपार शक्ति, मगर वो शक्ति सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हुई। सुविधाओं के साथ साथ हमने अनजाने में विनाश के बीज भी बो दिए।
अच्छा,
जैसे कारखानों का धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, धरती से खनिज निकालते गए बिना सोचे समझे, आबादी बढ़ती गई, और जो सबसे बड़ी चिंता की बात वो बताते हैं वो है नैतिक मूल्यों का गिरना।
नैतिक मूल्यों का पतन?
हाँ, उनके शब्दों में कहें तो स्थितियां विस्फोटक नजर आ रही थी उस समय।
तो मतलब समस्या भारी चीजों में उतनी नहीं जितनी इंसान की सोच में है, तकनीक में नहीं, उसके इस्तेमाल में।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने पूज्य गुरुदेव, संकट की जड़ बाहर कम, इंसान के अंदर ज्यादा देखते हैं। नजरिया ऐसा हो गया है कि बस जो सामने दिख रहा है वही सच है, जिसे वो प्रत्यक्षवाद कहते हैं।
तात्कालिक लाभ।
हाँ, बस अभी फायदा मिल जाए, दूर की सोचना, संयम रखना, सदाचार, ये सब चीजें पीछे छूट गईं। इसीलिए वो इसे शक्तियों का दुरुपयोग कहते हैं।
दुरुपयोग, ये महत्वपूर्ण शब्द है।
हाँ, शक्ति होना बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल।
समझ गया, लेकिन अगर स्थिति इतनी विस्फोटक थी जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर ये उज्जवल भविष्य की आशा कहाँ से आई? किस आधार पर वो इतनी उम्मीद रखते थे?
यहीं पर उनका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो सामने आता है। वो कहते हैं कि ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है, इसका एक नियंता है, एक संतुलन बनाने वाली शक्ति है जो चीजों को पूरी तरह बिगड़ने नहीं देगी।
अच्छा,
वो मानते थे कि एक बदलाव का समय आएगा। उन्होंने खासतौर पर 1989 से लेकर सन 2000 तक का जो समय था, लगभग 11 साल, उसे युग संधि काल कहा।
युग संधि काल मतलब दो युगों के मिलने का समय।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा दौर जिसमें जो पुराना है, जो बेकार हो चुका है, वो खत्म होगा, उसका विनाश होगा, और साथ ही साथ नए युग के लिए, अच्छी चीजों के लिए सृजन भी होगा।
यानी विनाश और सृजन साथ साथ।
जी, वो कहते थे कि ये प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक हो सकती है लेकिन इसका अंत अच्छा होगा। 21वीं सदी एक उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगी।
ये युग संधि काल का विचार तो बहुत गहरा है। क्या पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए कोई और हवाले भी दिए, मतलब सिर्फ अपने अनुभव से कहा या?
नहीं, उन्होंने कई हवाले दिए। दुनिया भर के जो जाने माने भविष्यवक्ता हुए हैं,
जैसे
फ्रांस के नोस्ट्रेडामस थे, अमेरिका की जीन डिक्सन थी, अपने यहां भारत में महर्षि अरविंद थे, वो बताते हैं कि इन सब ने अपने अपने ढंग से इस मुश्किल दौर और इसके बाद आने वाले अच्छे समय की तरफ इशारा किया था।
अच्छा,
और सिर्फ भविष्यवक्ता ही नहीं, अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं, ऐसा वो बताते हैं। और एक और दिलचस्प बात,
क्या?
कि कई भविष्यवाणियों में इस बदलाव के दौर में भारत की भूमिका को बहुत अहम बताया गया है, एक मार्गदर्शक के तौर पर।
तो ये सब सुन के ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय है और बस हमें इंतजार करना है, या कुछ करना भी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव सिर्फ भविष्यवाणियों के भरोसे बैठने वाले नहीं थे, वो कर्मयोगी थे, वो सक्रिय प्रयास पर, पुरुषार्थ पर बहुत जोर देते थे।
अच्छा,
उन्होंने तो हरिद्वार में शांति कुंज को एक तरह से छोटा मॉडल कहा था, जहां विचारों में क्रांति लाने का, जीवन जीने का तरीका बदलने का प्रयोग चल रहा था।
विचार क्रांति।
हाँ, उनकी विचार क्रांति के तीन आधार थे। एक तो लेखनी, मतलब सही ज्ञान का साहित्य द्वारा प्रसार,
ठीक है।
दूसरा वाणी, यानी बोलकर प्रवचन द्वारा लोगों को जगाना, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की प्रामाणिकता।
प्रामाणिकता मतलब?
मतलब जो कहो वो करो भी, कथनी और करनी में अंतर न हो, जो जीवन जिया जा रहा है वो खुद एक उदाहरण बने।
और उन्होंने वो युग संधि, महापुरुष चरण जैसे बड़े अनुष्ठान भी आयोजित किए थे, उनका क्या लक्ष्य था?
हाँ, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रयोग थे। उनका लक्ष्य था कि लाखों लोग जब एक साथ साधना करें, जप करें, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, एक सामूहिक चेतना का निर्माण हो।
अच्छा।
जो सूक्ष्म जगत में बदलाव लाए और फिर स्थूल जगत में यानी हमारी दुनिया में उस उज्जवल भविष्य को लाने में मदद करे। तो व्यक्तिगत प्रयास भी और सामूहिक चेतना की शक्ति भी।
तो अगर हम सार निकालें तो पूज्य गुरुदेव का संदेश यही हुआ कि हमें विज्ञान और अध्यात्म यानी बुद्धि और विवेक, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा, संतुलन बनाना होगा।
एकदम सही, सार यही है। दिक्कत भौतिक तरक्की में नहीं है, उसके पीछे जो सोच है, जो चेतना है, उसमें है। अगर सोच स्वार्थी है, सिर्फ भोगवादी है, तो विज्ञान भी विनाश का कारण बन जाता है। और अगर सोच में विवेक है, परमार्थ का भाव है, तो वही विज्ञान कल्याण का साधन बन जाता है।
तो बदलाव अंदर से लाना होगा, विचारों के स्तर पर।
बिल्कुल, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है, क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी अवश्य बदलेगी। हमें अपनी क्रिया, अपने कर्म, अपनी सोच बदलनी होगी।
तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? यही कि चुनौतियां भले ही बड़ी दिखें, पर निराश होने की जरूरत नहीं है।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव एक बहुत मजबूत आशा का संदेश देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के अंदर और इस सृष्टि के अंदर सुधार की, नव निर्माण की बहुत क्षमता है। हालात कितने भी मुश्किल लगें, एक तो वो संतुलन बनाने वाली सत्ता है और दूसरा मनुष्य का अपना सकारात्मक प्रयास, ये दोनों मिलकर हालात बदल सकते हैं।
तो 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य सिर्फ एक सपना नहीं?
नहीं, वो एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। बस शर्त है कि सोच सही हो, दिशा सही हो और मिलकर प्रयास किया जाए।
और ये चर्चा एक विचार भी छोड़ जाती है कि ये जो बदलाव का दौर है, जिसे अवश्यंभावी कहा जा रहा है, जिसमें पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, भविष्य को बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकता है, ये सोचने वाली बात है।